Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Aradesh Chaitangaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shiva Bhagavad Bhakti Jan Shvetashvatara Upanishad ke स्वाध्याय प्रारंभ किया गया है। संबंध भाष्य का चिंतन कर रहे हैं। पूरे संबंध भाष्य में जो भी उद्धृति उद्धरण पुराणों से उपनिषद वाक्यों के द्वारा श्रुति वाक्य के द्वारा दिया जा रहा है, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? एक ही तत्व है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष संभव है अथवा नहीं। इतने जो आपको संबंध भाष्य में जो भी व्याख्यान कर रहे हैं, जो भी उद्धरण दे रहे, उसमें मुख्य बिंदु यही है। कुछ आचार्यों का कथन है ज्ञान कर्म समुच्चय के द्वारा, अर्थात साधक जीवन भर शास्त्रीय श्रौत प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करे और साथ साथ ज्ञान का अभ्यास करते रहे, ये दोनों के युग्म रूप से ही मोक्ष साधनत्व प्रतिपन्न संभव है। और आचार्य शंकर इसके विरुद्ध कहते हैं समुच्चय ज्ञान और कर्म दो समुच्चय रूप से मोक्ष के साधन नहीं है, परंपराया स्वीकार कर्तव्य, शास्त्रीय श्रौत कर्म के अनुष्ठान से चित्त शुद्ध और उस शुद्ध परिशुद्ध चित्त के द्वारा ही ज्ञान को तुम प्राप्त कर सकते। इसीलिए पूर्व पक्ष के संशय को कुरुबन्ने वेह कर्माणि जिजीविषे छतगुम समा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, इस सूत्र के द्वारा पूर्व पक्ष ने बताया जीवन पर्यंतम जावत जीव का कर्म अनुष्ठान नियमेन सति कथम विद्याया मोक्ष साधनत्वम। अगर आप कर्म को ज्ञान के समुच्चय के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, पूर्व पक्ष कह रहे हैं, तब क्यों जीवन भर कुरुमन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेत ऐसा श्रुति कही? प्रश्न ठीक है कि नहीं, क्योंकि वहां तो साफ लिखते हैं ना कि कुरुमन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेत छत गुम समा, तो फिर ऐसा क्यों माना गया कि जीवन जीवित रहने की इच्छा करो कर्म करते हुए? इससे पूर्व पक्ष निश्चय बतलाते हैं कि देखिए जावत जीव कर्म अनुष्ठान नियमेन सति कथम विद्याया मोक्ष साधनत्वम, केवल विद्या को ही मोक्ष के साधन क्यों आप मान रहे हैं? कर्म प्लस विद्या, कर्म और विद्या के दोनों के साथ साथ ले चलो, यही मोक्ष के कारण है। आप लोगों के क्या विचार है? शास्त्र निश्चय नहीं मैं पूछ रहा हूं, शास्त्र निश्चय तो मुझे भी पता है। अपना क्या निश्चय, क्या दिल क्या कहना चाहते? हमेशा ज्ञान में आप रह सकते हैं, हमेशा कर्म में आप रह सकते हैं? तो क्या है, कुछ देर कर्म करो कुछ देर, अरे अभी अगर एक घंटा से ज्यादा स्वाध्याय होने लगेगा तो जी घबराने लगे तो तो जुग्म ऐसे लगता है कभी कि दोनों अगर साथ चले कि उपासना भी हो कर्म भी हो और साथ साथ ज्ञान के लिए अभ्यास भी करे थोड़ा चिंतन मनन श्रवण आदि और कर्म भी करते चले, ऐसा अगर युग्म रूप से हो और वो मोक्ष फल पर्यंत पर्यवसायी हो तो ठीक है। परंतु अद्वैत सिद्धांत यह है कि कर्म के द्वारा, कर्म को अद्वैतवादी भी कर्म को स्वीकार करते हैं परंतु जुग्म रूप से नहीं, परंपराया मान्य है, सहचर्यया मान्य नहीं है। इसलिए कर्म कब तक करना है और कर्म के बाद जो स्थिति है उसको अवलोकन करना है। हम लोग अभी कर्म श्रेणी में पड़े हैं और विचार कर रहे ज्ञान श्रेणी की, तो ये दोनों को एक समन्वय स्थिति में लाना मुश्किल है। इसलिए भगवत गीता जी में बता ना, आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमक कारणम उच्यते। साफ साफ डिमर्केशन करके बता दिया ने कहां तक कर्म करना चाहिए और किस स्थिति में पहुंचने पर कर्म स्वतः, ये मुख्य है। इसलिए अगर कर्म छूटने की स्थिति में नहीं है और हम छोड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं तब तो यह अनुचित अनधिकारी की बात है। और ज्ञान की योग्यता चित्त शुद्धि आदि अगर हो गया तो कर्म महाराज स्वतः जो है श्रवण मनन निधिध्यासन में मन लग जाएगा, तो कर्म करने की और जो अंदर से एक ललक इच्छा चेष्टा औत्सुक्यता ये सब फिर नहीं रहेगी। इसीलिए दोनों निश्चय को अलग अलग समझना चाहिए। अगर अधिकारी कर्म में हमारा अधिकार है तो जरूर कर्म करे, हमारा लक्ष्य हमारा डेस्टिनी वो है कि कर्म त्याग ज्ञान का अभ्यास, परंतु हमारा अधिकार चित्त का भी कर्म में है तो कर्म करे। अधिकतर समय उसको देख करके वो अच्छा है वो झंझट नहीं है वो कर सकते तो उसमें हम लग जाते हैं, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहा कि युद्ध करो, उनको भी तो ऐसे बताया कि ये छोड़ो ये ठीक नहीं है ये नहीं, और फिर बाद में कह रहे कथम माम नियो जैसी केशव, इसका मतलब क्या, अधिकार को निश्चय करके उसमें संलग्न हो जाना और इसी में व्यक्ति शायद ज्यादा डेवलप कर सकते और इसी को स्वधर्म शब्द से कहेंगे कि नहीं, जो अपने नेचर है जो अपने ये है उसमें आप ज्यादा डेवलप कर सकते। अधिकतर समय जो अपना नेचर नहीं है अधिकार के बाहर है वो कर्म जब हम करने जाते हैं लग जाते तो उसमें हमको सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए भगवत भक्तजन आचार्य शंकर अद्वैत सिद्धांत के ऊपर जो पूर्व पक्ष एक आक्षेप लगाया, यह केवल आक्षेप आप अधिकारी अनधिकारी के विचार को अगर देखेंगे, इसलिए उस मंत्र में ही लिखते हैं कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेत। इसका ये जो जिजीविषा करना जो जीना चाहते हैं वो कर्म करते हुए जीवित रहे, तो इसलिए कर्म के अधिकार अलग है ज्ञान के अधिकारी अलग है, दोनों को समुच्चय करके मोक्ष के साधनत्व को आप प्रतिपन्न नहीं कर सकते, इतना तक बताया। और फिर तर्क युक्ति और अनुभव श्रुति प्रमाण के द्वारा सिद्ध कर दिया कि मोक्ष के साधन तो महाराज विद्या है ज्ञान है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलना संभव है और ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि जो है द्वारक है। इतना निश्चय करने के बाद पूर्व पक्ष द्वितीय प्रश्न कर रहे हैं, आपके इसके दो तीन पंक्ति जो है हो गया है, फिर भी उस वहां उस प्रश्न को उठा करके मैं प्रसंग पर आता हूं। प्रश्न ये किया गया था ननु बंधस्य मिथ्यत्वे सति ज्ञान निवर्तत्वेन ज्ञानात् अमृतत्वम् स्यात्। अब प्रश्न है जीव का जो बंधन है ये सत्य है या मिथ्या है, क्या है? मिथ्या है, सत्य नहीं है। जो मिथ्या है, अब प्रश्न है सत्य जब नहीं है, मिथ्या अगर हो तब तो महाराज ज्ञान से मिथ्या भ्रम जो है निवृत्त संभव है। पहले तो निश्चय ये करना कि हमारे जीव का जो बंधन है ये सत्य है अथवा मिथ्या है। पेज नंबर बता दीजिए तो सबके साथ एक ही पुस्तक 39। तो जीव का बंधन मिथ्या अगर होता, यही बोल रहे हैं, ननु बंधस्य मिथ्यत्वे सति, यदि आप बंधन मिथ्या कहते हो ज्ञान निवर्तत्वेन, तब तो महाराज ज्ञान के द्वारा वो बंधन जो है छूट सकता था। ऐसा नहीं, और उस ज्ञान से ही अमृतत्वम स्यात्, अमृतत्व की प्राप्ति संभव। न तु एवम अस्ति, यही प्रश्न है। पूर्व पक्ष कह रहे ये जो बंधन है ये सत्य है मिथ्या? मूल प्रश्न यह है कि बंधन सत्य है अथवा मिथ्या। पूर्व पक्ष का निश्चय है कि बंधन सत्य है, और सत्य बंधन चुकी है तो ये ज्ञान से कभी भी मिटने वाली नहीं है, और मिथ्या होता तो महाराज ज्ञान से संभव। और इसी प्रसंग को सिद्धांति के द्वारा निश्चय बतलाते हुए उच्चते करके उत्तर देना प्रारंभ किया कि तुम कितने भी प्रत्यक्ष सिद्ध के द्वारा श्रुति प्रमाण के द्वारा बताओ, परंतु अंततः ये जो भ्रामक है, भ्रांति है, ये मिथ्या बंधन ही एकमात्र कारण है, और ये मिथ्या बंधन ज्ञान के द्वारा ही संभव है दूर करना। इतना निश्चय करके अभी जहां तक आप लोग पहुंचे हैं, इसलिए मैं उसको बता, क्योंकि अभी सारा उद्धरण ही दे रहे हैं ना, एक के बाद एक। अब उद्धरण में प्रवेश करना है, अच्छा उच्चारण करना है क्या? तब तो अब मेरे को ही बताना, तो मैं तो दो दिन में ही बता दूंगा पूरा ही। तब तो हाँ, तो इसीलिए इतना निश्चय करके बताया अविद्या च क्रिया सर्वा। अब 48 हमारे पन्ना में, जिस 46 में होगा शायद आप लोगों का। अविद्या च क्रिया सर्वा विद्या ज्ञानम प्रचक्षते कर्मणा जायते जंतुर्विद्यया च विमुच्यते। एक एक जो उद्धरण दिया ना, इतना स्पष्ट रूप से निश्चय करके बतलाते हैं, एक अलग आनंद है। कहते हैं सभी कर्म जो है, जो भी आप कर्म करते हैं वो अविद्या प्रसूत कर्म है। कर्म है और उसमें आप ज्ञान को सम्मिलित कर रहे हैं। कौन ज्ञान? लौकिक ज्ञान नहीं, कर्म आप कर रहे हैं। जैसे इस पेंसिल को मैं यहां से ये उठा रहा हूं, ये भी कर्म है। इस कर्म के प्रति एक ज्ञान है, परंतु इस ज्ञान की चर्चा यहां नहीं किया जा रहा है। पारमार्थिक ज्ञान हो जाए और फिर कर्म संभव नहीं है। कर्म कर रहे इसका मतलब ज्ञान अभाव है, अज्ञान में है, और कर्म कर रहे हैं चूंकि अविद्या ग्रसित है। उसी को इस श्लोक के द्वारा बोल रहे हैं, अविद्या च क्रिया सर्व विद्या कर्म ज्ञानम प्रचक्षते कर्मणा। और चूंकि अविद्या निमित्त कर्म है, और वो कर्म महाराज बंधन का कारण। कितना साफ निश्चय, इतना है। अविद्या च विमुच्यते, और जब अविद्याजन्य कर्म कर्मजन्य बंधन, तो उस बंधन से कब मोक्ष मिलेगा महाराज? विद्या अमृतम अश्नुते, और उस विद्या से आप अमृतत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अमृतत्व प्राप्त करने के लिए विद्याजन्य जो कर्म उच्छेद, वो उच्छेद हो जाए तो फिर मोक्ष को आप प्राप्त कर सकते। अद्वैतम परमार्थो ही द्वैतम तद्भिन्न उच्चते, इसलिए निश्चय क्या है? परमार्थ सत्य क्या? त्रिविध सत्य वस्तु है ना, इसमें परमार्थ पारमार्थिक सत्य कौन है? परब्रह्म। इसलिए इसको अद्वैत शब्द से कहा, अद्वैत परमार्थो ही, और उससे भिन्न तद्भिन्नम द्वैतम उच्चते, और उस द्वैत के चार भाग करके बता रहे, पशु तिरियंग मनुष्याख्यम तथैव नृप नारकम। ये जो पशु तिरियक मनुष्य नारकी जीव, ये चार प्रकार के जो विभाग है, भेद है, यह भी मिथ्या ज्ञान के निमित्त है। पारमार्थ, ये जो भिन्न भिन्न द्वैत जगत का आप दर्शन करते देखते हैं, ये पारमार्थिक सत्य है कि व्यवहारिक सत्य है? इसलिए पारमार्थिकम तो अद्वैतम, और व्यवहार में जब तक व्यवहार है, द्वैत में है, तब तक अहम नेदम, ऐसे विभाग है। परंतु जहां परमार्थ स्थिति है, वहां तो अद्वैत के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसीलिए ऊपरी दृष्टि से जब तक हम घूमेंगे, तब तक तो हलचल है, स्पंदन है, दृश्य दृष्टा विभाग है। परंतु जब ही साधक आवृत्त चक्षु अमृतत्व की प्राप्ति की इच्छा रखता है, तो फिर वो आवृत्त चक्षु होने से एकम, उसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए महाभारत में व्यास जी लिखते हैं ना, अयम निजो परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। ये लघु चेतना और बृहत चेतना, इसी बात को देखिए, नारद जी को भी सनत कुमार जी उपदेश दिए, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत विजानाति नान्यत शृणोति स भूमा, वो तुम्हारी भूमा चेतना, उसको प्राप्त करो। यत्र जन यत्र अन्यत अन्यदेवं पश्यति, वो भूमा नहीं है। तो लक्ष्य हमेशा व्यापक भूमा है, और उस भूमात्व को, भूमैव सुखम नाल पे सुखम अस्ति, तो भूमा चेतना को अगर हम प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान के अधिकारी है, और उससे अतिरिक्त अलग जो भी आप जानते हैं सब द्वैत है। और अद्वैत में सुख है, निष्पंदता है, शांति है, और द्वैत में सुखालेश है, सुखाभास है, और उसी के कारण बारंबार इस द्वैत संसार में आना पड़ता है। अब यहां से आगे के ग्रंथ को देखिए, अज्ञानम एतद् द्वैताख्यम अद्वैतम श्रूयताम परम ममत्वहम इति प्रज्ञा वियुक्तम अविकल्पवत्। अज्ञातम एतद् द्वैताख्यम, इतना है कि भाई देखो, अद्वैत क्या है? अद्वैत शब्द से आप किसको समझते हैं? कि श्रूयताम अद्वैतम, अद्वैत क्या है उसको सुनो। मम त्वहम इति प्रज्ञा वियुक्तम अभिकल्पवत, ये जो मैं और मेरा और तुम, हाँ, ये बुद्धि रहित जो है, ये है अद्वैत। अभी हम लोग अद्वैत की बात सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु बुद्धि में कौन सी बात प्रतिष्ठित है? है ना, हम लोगों को बहुत ही मुश्किल है। मैं यही इसी पंक्ति को आज दिन भर सुबह से, कि बात करनी है अद्वैत की, स्थिति है घोर द्वैत की, बिल्कुल तुम तेरा मैं मेरा इसमें एकदम रचपच करके इसके सिवाय कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई। पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, विचार किया हुआ कॉन्सेप्ट अलग है और जो अनुभव करके बताने वाले वो चीज अलग है कि नहीं, बिल्कुल अलग। तो यही कह रहे हैं कि अद्वैत का क्या मतलब है कि जिसमें कोई विभाग बुद्धि जिसके पास नहीं है। अभी तो मैं इतना और मेरा ये है और इससे अतिरिक्त सब अलग है। तो ये जो बुद्धि है द्वैत बुद्धि, इससे रहित जो है वो भी निर्विकार निर्विकल्प, वो है अद्वैतम। अविकार्यम अनाख्येयम अद्वैतम अनुभूयते। और इस अद्वैत के लिए कहते हैं द्वैत का मूल क्या है। द्वैत जो आप देख रहे हैं, द्वैत के मूल में कौन सा तत्व है, अंतःकरण कह सकते हैं। मूल में तो अज्ञान है, तो अज्ञान के आभास प्रतिबिंब जिसको कह सकते हैं वो तो अंतःकरण में ही पड़ा ना, तो उसी को यहाँ चिदाभास, उसी को यहाँ कह रहे हैं मनोवृत्तिमयम द्वैतम अद्वैतम परमार्थत। भाई मन जब तक है, अंतकरण जब तक है, तब तक आप कितना भी व्याख्यान सुन लो, व्याख्यान कर लो, द्वैत में तो